पिछले अध्याय में आपने देखा कि दिशा देवांश से शादी करने के बाद रोती है। देवांश उसे चुप कराता है और खुश रहने को कहता है, लेकिन दिशा कहती है कि उसे अब उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दिशा वहां से जाने लगती है तो देवांश उसे गोद में उठाकर कार में ले जाता है। दूसरी तरफ रुद्र रूही को ढूंढने के लिए सीसीटीवी रूम में जाता है। सीसीटीवी फुटेज में रूही एक बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिखती है, लेकिन उसके बाद फुटेज बंद हो जाती है। रुद्र गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ रुद्र रूही को ढूंढने के लिए सीसीटीवी रूम में जाता है। सीसीटीवी फुटेज में रूही एक बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिखती है, लेकिन उसके बाद फुटेज बंद हो जाती है। रुद्र गुस्से में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 213। अब आगे कॉलेज में रुद्र की गुस्से भरी नज़रों को खुद के ऊपर देख सिक्योरिटी गार्ड समझ जाता है कि रुद्र उससे क्या पूछना चाहता है। जिसे समझ वे डरते हुए बोला, सर उस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं, क्योंकि उस तरफ कोई नहीं जाता। वे बिल्डिंग हमेशा बंद ही रहती है। पता नहीं मैम उस तरफ क्यों गई है। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रुद्र गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लेता है और बिना कुछ कहे पीछे वाली बिल्डिंग की तरफ रूही को ढूंढने चला जाता है। वहीं रुद्र को जाता हुआ देख अमन के साथ साथ बाकी बॉडीगार्ड्स भी पीछे वाली बिल्डिंग की तरफ रूही को ढूंढने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम के अंदर रूही को उस क्लासरूम में बंद हुए काफी समय हो गया था और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। वे इतनी देर से आंखें बंद किए जमीन पर लेटी हुई थी, पर उसे इस अंधेरे कमरे में काफी डर लग रहा था। वे रुद्र को याद करते हुए बोली, आप कहाँ पर हैं? प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए। इतना बोल वे दोबारा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र और रुद्र के बॉडीगार्ड पीछे वाली बिल्डिंग की तरफ पहुंच गए थे और एक एक कमरे को खोलकर रूही को ढूंढने लगते हैं। वहीं रुद्र भी रूही को आवाज़ देते हुए बोला, रूह कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ, तुम जहाँ भी हो मुझे आवाज़ दो। रूह इतना बोल वे रूही की आवाज़ देते हुए एक एक कमरे को चेक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देवांश का पर्सनल विला। देवांश की कार उसके पर्सनल विला में पहुंचती है, जिसे देख मयंक तुरंत कार से उतर देवांश की कार का दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद देवांश उसी तरह दिशा को गोद में लिए कार के बाहर आ विला के अंदर चला जाता है। वहीं दिशा जो इतनी देर से देवांश को खुद से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, अपने सामने इतना बड़ा और सुंदर विला देख वे कुछ पल के लिए देखती ही रह जाती है, क्योंकि ये विला जितना खूबसूरत और यूनिक तरीके से बनाया गया था उतना ही खूबसूरत यहाँ पर गार्डनिंग भी की गई थी। विला के चारों तरफ काफी बड़े बड़े और खूबसूरत फूल लगे हुए थे, जो आज से पहले उसने देखे क्या उनके नाम भी नहीं सुने। उन फूलों की ताजगी और खुशबू को देख और सूंघकर दिशा एक पल के लिए ये भूल ही जाती है कि वे इस वक्त कहाँ, किसके साथ और किसकी बाहों में हैं, क्योंकि उस विला की एक एक चीज उसे लुभाने के लिए काफी थी। तभी देवांश विला के गेट के पास आ दिशा को अपनी बाहों से नीचे उतार देखा है, जिसे देख दिशा होश में आती है और कभी देवांश को तो कभी उस विला को देखने लगती है, क्योंकि ये विला काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जैसे शादी के बाद एक दुल्हन के गृह प्रवेश के लिए सजाया जाता है। दिशा इन सारी चीजों को देख देवांश को देखते हुए बोली, सर ये सब क्या है? आप मुझे ये कहाँ लेकर आए हैं? मुझे यहाँ नहीं रहना। आपने मुझसे शादी तो कर ली, पर इसके आगे आप मुझसे किसी और चीज की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा। मैं अभी के अभी यहाँ से जा रही हूँ, और खबरदार जो इस बार मुझे गोद में उठाया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आप जब मन चाहा गोद में उठा लिया।
इतना बोल वे वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, वैसे ही देवांश दिशा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी दिशा संभल नहीं पाती और जाकर सीधा देवांश की बाहों में गिर जाती है।